జాగుదరోతి సంగ విదగ సంగ పట్టంబర సహస్యా బృందారణ్య నివాసినం హృదయ సద్దామాపి రామోదర రాధాస్కంద నివేశితో జలభుజం ధ్యాయేం దామ. శ్రీ గోకృష్ణ దాస్ బాబాజీ మహారాజ్ కి తిరభావ తిథి తార ఉపలక్షే సకాల వేళ కిచి కుచు వక్త తా చరణే పుష్పాంజలి ప్రదాన కరేసే. ఎఖన్ 10 మినిట్ మధ్య నిజే నిజ పుష్పాంజలి అర్పిత కరవే, কারণ বহু বক্তা সর্বপ্রথমে শ্রী রসানন্দ ব্রহ্মচারী তাহার গুণানুবাদ করবে।
చక్షోర్మిలితం జయన తస్మై శ్రీగురవే నమః. గురవే గౌరచందాయ రాధికాయ విష్ణవే కృష్ణాయ కృష్ణమూర్తాయ తద్భక్తాయ నమో నమః. నమో గౌరకిశోరాయ సాక్షాయ వైరాగ్యమూర్తయే విప్రలంబే పాదాంబుజాయ నమ. హరి కృష్ణ 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 హరి హరి, హరి రామ హరి రామ 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 హరి హరి. నిశ్రతం మే కృపాద నిశిల్లా విశ్వ విష్ణుపాద అష్టోదశత శ్రీ శ్రీ సింహాధిపతి శ్రీలు శ్రీ శక్తి గోస్వామి మహారాజుని అనంతపురి సాక్షాత్పాదాచార్యజి స్వామి శ్రీ సింహాధిపతి నారాయణ గోస్వామి మహారాజుని శ్రద్ధా పుష్పాంజలి ఉపస్థితి వైష్ణవ వైష్ణవి సమీప చరణ. आज हमारी मराठा गुरुदेव
मालिक ने
अष्टोदश
इनका कारमाला किसकी गिन गई है खुद
महाप्रभु भक्त जतव दया के प्रधान जहाने की दूसरा फल गौर भगवान. फिर महाप्रभु का जितने सत्य है फिर महाप्रभु भक्त जतव दया के प्रधान फिर उनका दर भी दया के ही मूल है. इसलिए श्री सार्वम कटाचार्य भी महाप्रभु को स्तुति करते हुए कहते हैं दया के विद्या योगव शिक्षार्थ में और पुरुष पुराण हुए भी महाप्रभु को स्तुति करते हुए कहते हैं वैराग विद्या निज भक्ति योग. तुम कहते हैं वैराग विद्या निज भक्ति योग को जो शिक्षा देने के लिए वो पुराण को जो महाप्रभु जगत में आए और महाप्रभु सबसे ज्यादा वैराग प्रधान. इसलिए इनका स्तुति में इसको प्रभुपाद कहते हैं नमः गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ति. कहते क्या मूर्ति क्या था कहते साक्षात वैराग्य का मूर्ति है. इसलिए वैराग्य का दो अर्थ होता है. एक अर्थ होता है साधारण रूप में विषय में वैराग्य है. इसलिए इनका भी ଯେମିତି ରଘୁନାଥ ରଘୁନାଥର ବୈରାଗ୍ୟ ଦିନ ପାଷାଣରେ ରେଖା ଉସି ତର ଇତ୍ୟାଦି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜୈସେ କରଦର ମେ ସାଧାରଣ ରୂପ ମେ ବଡ଼େ ବୈରାଗ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଖନ କୋ ମିଲନା ହେ ଉପର ଟକେ ଉନକା ବୈସେ ହେ ଆଉ ଦୂସରେ ଦୂସରେ ବୈରାଗ୍ୟ କା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଜୋ ହୋନା ହେ ବିଶେଷ ପୂର୍ବକ ଭଗବାନ କା ଚରଣ ମେ ଅନୁରାଗ ହେ ଇସଲିଏ ସାକ୍ଷାତ ବୈରାଗ୍ୟ ହୋତେ ହେ ତେରେ ବିପ୍ର ଲମ୍ବ ରସାମ ହେ ତେରେ ବୈରାଗ୍ୟ ବିଶେଷ ଅନୁରାଗ ଦେଇଛେ ଥା लंग रस का ये साक्षात मूर्तिमान थे। इसलिए सबे हम श्रवण कर रहे थे कैसे हर समय कोठाए को प्रेमयी राजे राजे यह कीर्तन उनको बहुत ही प्यारा था। सब समय कोठाए को प्रेमयी राजे राजे बोल के कीर्तन करते थे और कभी कभी वे दरवाजा बंद करके बड़े जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र को इतने जोर जोर से उच्चारण करते थे ऐसे लगता था गला फट करके खून बहने लगेगा। इतने जोर जोर से हरिनाम करते थे। इसलिए इनका शिक्षा है उच्च स्वर कर हरि नाम लगाओ नाम प्रभाव स्मरण हरि गये सेकाले भजन निर्जल संभव। इसलिए उच्च स्वर में हरिनाम करने के लिए उन्होंने विशेष पूर्वक शिक्षा दिया है। इसलिए जो इसलिए कभी कभी उनके पास में कोई कोई व्यक्ति आते थे जैसे बाबा जी महाराज हमको शिक्षा प्रणाली की शिक्षा दो अष्टकालीय लीला की हमें शिक्षा दो। लेकिन बाबा जी महाराज साक्षात सिद्ध पुरुष है उनको पता है कि अनधिकारी व्यक्ति ये सिद्ध स्वरूप की चिंता नहीं कर सकते ये अष्टकालीय लीला स्मरण करने का अयोग्य है। इसलिए वे अनधिकारी व्यक्तियों को यह चीज नहीं दिया करते थे शिक्षा नहीं देते थे। इसलिए इनका जो जीवन है साक्षात वैराग्य मूर्ति है। इसलिए श्रीमद् भागवत में महा वैरागी धैर्य करे परापेक्षा अतएव कृष्ण कार्य करे उपेक्षा क्योंकि जो वैरागी है उनको विशेष करके लगना है रक्षी सती की विश्वास और गुप्त से वर्णन तथा क्योंकि उनको भगवान को पर भी यह विश्वास होनी चाहिए भगवान अवश्य रखे कृष्ण विश्वास पालन भगवान संपूर्ण रूप में हमें रक्षा करेंगे और भरण पोषण करेंगे तभी यह चीज को और विश्वास कर सकते हैं तभी वही कर सकते हैं जो संपूर्ण भगवत चरण शरणा पर। इसलिए भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी एक शुद्ध वैरागी के लिए जो लक्षण उन्होंने बताया कोई बोलेगा भैया अगर सब कुछ छोड़ छाड़ कर भजन करने के लिए आएंगे फिर हम खाएंगे भैया तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्या भगवान पर विश्वास नहीं है भगवान इतना बड़ा पृथ्वी बना दिया इतने पेड़ पौधा फल फूल लगा दिया फिर तुम खाने के लिए चिंता करते हो कहते भैया कम से कम सोने के लिए कहीं स्थान होनी चाहिए कहते क्यों भगवान सुंदर सुंदर गुफा बनाए और इतना बड़ा पृथ्वी क्यों बनाया हमने हाँ इतना बड़ा पृथ्वी बनाने सोने के लिए कहीं कमी है इसमें क्या भैया फिर पीने के लिए तो पानी चाहिए कहते भगवान इतने जो गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा इतना नदी जो बनाया तो भगवान क्यों इतना नदी क्यों बनाया कहते ठीक है लेकिन तुम उसको पानी पीने के लिए पात्र दे जाइए कहते क्यों भगवान अजय नहीं दिया ये अजय दे दिया इसे पानी पैर कर देती लो कहते भैया सोने के लिए तो कहीं बिस्तरा चाहिए हाँ बिस्तरा चाहिए और सोने के लिए बड़े तकिया की बड़ी नहीं दिया आई कहते क्यों भगवान ने हाथ नहीं दिया ये हाथ की सारा सो जाओ कहते अगर जंगल में आप बोल सको जंगल में रहते हो भजन करेंगे अगर शेर आकर खा गया तो कहते क्यों भगवान क्या अपना भक्त वत्सलता प्रभु क्या छोड़ दिया है भगवान को कभी तो विश्वास नहीं है क्योंकि यह जो सुंदर गोस्वामी एक निरपेक्ष वैराग्य के लिए जो बता रहे क्योंकि धन दुर्बल दुर्मंधा था जो धन मतलब बदलाव है उनको पास में गिड़गिड़ा नहीं था उनको पास में हाथ धरने की कोई जरूरत नहीं है भगवान को पर में निर्भर करके भगवान भजन करो भगवान संपूर्ण तुम कर रखा करके यह जो श्लोक सुंदर गोस्वामी बताए ये एक एक वस्तु ये गौर किशोर दास भगवान महाराज के जीवन में ये देखने को मिलता इसलिए गौर किशोर दास भगवान महाराज फिर रहते थे कहाँ पर कोई अच्छे जगह नहीं थी वो साधारण बैठने में रहते थे क्यों ये इसका बदबू सही है हाँ लेकिन बाहर रहेंगे जितने लोग इनको आकर तर्क करते थे जानते थे सिद्ध महात्मा, इसलिए कभी कभी चारों तरफ से तांता विश्वास नजरिका तांता चारों तरफ में भिक्षा देते थे। कहते साधारण लोगों को यह विश्वास हो कि वहां मछली खाने का दबाव है, जैसे कि मछली का तांता क्यों आएगा, कम से कम लोग तंग नहीं करेंगे विषय का जो जंत है, कम से कम तांत नहीं आएगा, इसलिए उन्हें सिर्फ डर से वो पैखाना करते थे वहां करके जोर जोर से नाम करते थे। जिस समय हमारे भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज जा करके जिस समय उनको कृपा प्राप्त करा और उनको कृपा प्राप्त किया और उनको कृपा प्राप्त करके निर्भय होकर के सारा जीवन में जैसे उन्होंने निर्डर होकर के सिंह रूप में सरकार उन्होंने प्रचार प्रसार किया, ये महापुरुषों का आशीर्वाद है और उनको सिंह का बच्चा भी सिंह होता है। इसलिए हमारे महाराज जी को भी देखो व्यक्ति एक शहर है, हमने बहुत सारी जगह में गए महाराज को देखा, बड़े से बड़े व्यक्ति का वृंदावन को तीन जगह देखा, कहीं भक्ति का विरोध कहीं मायावास के बाहर में किसी ने बोल दिया तो महाराज की शेर जैसे एकदम उससे झगड़ पड़ी। मैं इतना डर रहा था महाराज इतने बड़े आदमी इसको ऐसे उसको एकदम इसका जो सिद्धांत को ऐसे चकनाचूर कर देते थे, डर रहा था महाराज जी को डर है नहीं। इसलिए ये गौरव से दास महाराज महाराज परंपरा में समझो कि महाराज जी एक शेर का बच्चा शेर जैसे है, इनका जो क्रिया है कभी कभी प्रभुपाद से कुछ अलग दिखती है। जैसे प्रभुपाद ने कहा देखो ये कलकत्ता जो है ये कई का स्थान है खबरदार वहां जाना नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया सर्वप्रथम हुए श्री 12000 गोविंद मंडल सर्वप्रथम उन्होंने स्थापन किया है। अब प्रभु आप ये गौरव से दास महाराज महाराज का जैसे भेद है कौन सा भेद है जैसे बाबा जी भेद है, लेकिन प्रभुपाद का दिखाई पड़ता है प्रभुपाद का दिखाई पड़ता है संन्यास भेद किया और संन्यास भेद से प्रचार किया। और हमारे गौरव से दास बाबा जी महाराज ने कहा था जब मैं अप्रकट शरीर छोड़ूंगा मेरे चरण में रस्सी बांध करके संपूर्ण नवद्वीप में मेरे कलेवर को पूर्ण दिशा के लिए मेरे को विदान फेंकना, कम से कम नवद्वीप का रजत मुझे प्राप्ति हुई थी, लेकिन प्रभुपाद ने वो काम नहीं किया। इसलिए जिस समय गौरवेश्वर दास महाराज महाराज अप्रकट हो गए हैं उसी समय खबर आते ही प्रभुपाद वहां पर आए और कुछ बाबा जी लोग जानते हैं सिद्ध महात्मा अगर इसको समाज देंगे कम से कम लोग अगर कुछ प्रणाम देंगे कम से कम अपना बिजनेस चल जाएगा, इसलिए कुछ लोग वहां पर बाबा जी लोग एकत्रित हो गए। प्रभुपाद सुनते ही वहां पर अपना शिष्य प्रशिष्य को लेकर वहां उपस्थित होते हैं, उपस्थित होकर के दावी करते हैं कि ये वैराग्य महापुरुष है, इनका अगर कोई शिष्य है तो मैं ही अकेला शिष्य हूँ, यहाँ पर कोई शिष्य नहीं, लेकिन वहां पर सारे बाबा जी बोल रहे हैं हम ही शिष्य है। उससे बड़े झगड़ा हुआ वहां पर पुलिस अफिसर लोग आ गए, जो पुलिस अफिसर आए वहां प्रभुपाद वहां पर दावी किया इनका शिष्य कोई नहीं, तो उन्होंने कहा आपको क्या प्रमाण है, क्या ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं ये साक्षात महापुरुष है महाभगवत अपराधी का कलेवर, अगर इनको शरीर को कोई अगर स्पर्श करेगा तो वो ध्वंस हो जाएगा, इसलिए अगर कोई इनका शिष्य त्यागी है और मैं भी उनका त्यागी शिष्य हूँ इनको कोई त्यागी महापुरुष ही समाधि दे सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं कहते तो बाबा जी वैसे है कहते ऊपर से केवल बाबा जी वैसे लिया है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बाबा जी में है एक साल के अंदर में अगर किसी ने मन में भी कोई व्यक्ति अगर स्त्री संग नहीं किया वो आकर इनको समाधि दे, नहीं तो इनको शरीर को स्पर्श करेगा तो चल करके राख बन जाएगा, उनको सोचे ही बाबा जी लोग काम गए जो लोग बाबा जी भ्रष्टाचार थे और किसी से सरकने लगे, तथा अगर एक साल में नहीं हो छह घंटा के अंदर में अगर किसी ने स्त्रीक्षण नहीं किया है अगर वे आकर के अपने शरीर को संभाल ले इसको सुन ले और कुछ बाबा जी तीसरा ने अगर कहते अगर छह महीना के अंदर में नहीं अगर एक महीना के अंदर में अगर किसी नहीं किया है और कुछ तीसरा ने ऐसे कोई है नहीं तब 15 दिन एक सप्ताह लास्ट प्रभुपाद जी ने बताए एक दिन पहले तक एक रात की पहले तक मन में अगर किसने स्त्री को स्मरण नहीं किया अगर इसे कोई व्यक्ति आए उनका समाज नहीं बोलते ही सभी को खबर से खराब हो गया और एक एक सबके सब निकल गए जितना बोली सब थे वो धन रह गए एक तरीके से साधु है। तो प्रभुपाद ने उनको शरीर को उन्होंने बताया था मेरे शरीर में रस्सी बांध करके दो लोग सोच रहे थे, दो दास देख रहे रस्सी बांध करके संपूर्ण नवदीप में उनको पूरा शरीर को इस विचार से ले जाए। प्रभुपाद ने कहा उनको गुर्जर को जो भावना है साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकते हैं, एक शुद्ध शिष्य के हृदय में ही शुद्ध और गुरु जी का भावना प्रतिफलित होते हैं। और प्रभुपाद ने कहा जिस शरीर को जिस समय हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर को त्याग दिया, शरीर क्या है वैष्णव का शरीर अपराध दिव्य है, इसलिए उस शरीर को महाप्रभु कितना आदर किया, अपना गोद में उठा कर महाप्रभु कीर्तन करते 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 और समाज करते अपना हस्त में महाप्रभु ने कितने आदर किया वैष्णव शरीर को, उनको कोई ब्रजरथ की कोई भगवती रथ की उनको कमी है। जब 24 घंटा में नैरत्य जब में जो अंतकाल लीला को हृदय में चिंतन कर रहे हैं, क्या कोई को लक्ष्य भी अलग है, संपूर्ण रजिंदर है, संपूर्ण अपराध से अलग है, इसलिए महाप्रभु ने भी आदर किया अंतर शरीर उठा करने जाएंगे। तो प्रभुपाद स्वयं अपना हाथ में ही वे उनको समाज देते हैं, इसलिए प्रभुपाद का कुछ गौर किशोरदास बाबा महाराज का कुछ लीला से आदर से इनको क्रिया कुछ उल्टी दिखने पड़ती है। प्रभुपाद वास्तव रूप में उनका शिष्य है, गौर किशोरदास बाबा महाराज का अभीष्ट है, श्री चैतन्य का अभीष्ट, गौर किशोर बाबा महाराज का अभीष्ट प्रभुपाद ने प्रतिष्ठा किया। उनने कहा कहीं कल्ले का नहीं जाना, अगर मैं बागोजा गोली पर मायापुर में नगद मठ को चैतन्य पर जगत में मठ स्थापन नहीं करते, अभी हम लोग जो पापी शरीर पापी कीड़े शरीर कीड़े हैं, तभी अभी थोड़ी बहुत जो भगवत भक्ति अनुसरण करने का जो थोड़ी हमें सुजग मिल रहे, तभी हमें सुजग मिल सकता था। गौरकिशोर दास महाराज जिस रूप में उन्होंने भजन किया है निश्चित रूप में प्रचार नहीं किया, लेकिन प्रभुपाद अगर प्रचार नहीं करते जो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी महिमा सारा पृथ्वी सुन रहे हैं, हाँ और सारा पृथ्वी के लोग जो कृष्ण नाम ले रहे हैं, ये कभी हो सकता था? तो क्या गुरु क्या चाहते हैं, गुरु जी का क्या इच्छा है? गुरु जी का इच्छा है श्री चैतन्य अभिष्टम स्थापित जन्म करे, चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्ट है। महाप्रभु का मनोभिष्ट क्या है? महाप्रभु का मनोभिष्ट है प्रति घरे घरे किया स्वर एक भिक्षा, बोलो कृष्ण भजे कृष्णा कर कृष्ण शिक्षा, महाप्रभु का एक आदेश है। या भाई ना बोलिए ना बोलाए यार पृथ्वी से आशीर्वाद नवराधिका सर्वत्र प्रचार धैर्य मरना, ये महाप्रभु का एक मनोभिष्ट है। अगर यह मनोभिष्ट को इतने जगत में स्थापन किया तो इतने स्थापन किया है श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का अभिष्ट यही, तब उन्होंने उनको अभिष्ट को संपूर्ण पृथ्वी में उन्होंने प्रचार करके अभी सारा दुनिया कृष्ण नाम कीर्तन में ना सुन रहे हैं, सब कृष्ण कीर्तन में सब नद्वारा बोल हो रहे हैं, किसका कृपा है? ये गौर किशोरदास बाबा जी महाराज प्रभुपाद और हमारे गुरु का जो था ये कृपा है, इसलिए उनका कभी गुरु जी को विरोध नहीं किए। उनको एक समय गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बड़े सुंदर शांति पूरी धोती और बड़े सुंदर कुर्ता पहन करके हर बार से प्रभुपाद के पास में आए, जो कि अत्यंत वैराग्य रूप में रहने वाले किसी तरह से काफी करके इसको देख करके बोले भाई ये गौर किशोरदास बाबा जी महाराज इतना बढ़िया धोती इतने बढ़िया कपड़े और हर बात है क्या बात है, फिर आप ऐसे क्यों रह रहे हो? बाबा जी लोग बाबा जी वैसे बैराग का बेस लेकर के बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लिए हुए बाबा जी का बेस करने की बड़ी गति गति का, उससे तो अच्छा है अच्छे बेस में खार बार रहा करो और भगवान का भजन करो, इसलिए उन्होंने यह सीखा दिया। किसी समय इसी सीखे के ऊपर में गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के घर में उसमें कुछ सामान रखा हुआ था, एक सांप ने कभी उसको ऊपर में चढ़ करके कभी उसने मुंह लगाए, किसी एक स्त्री ने देख लिया था, उसको देख लिया था तो जब वो सांप चला गया तो स्त्री ने आकर बोले बाबा जी महाराज हमने देखा है एक सांप इस चीते के ऊपर में चढ़े और मुंह लगाया, खबरदार खाना नहीं बन जाओगे। इतने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज इतने बिगड़ गए उसके ऊपर के, तू यहाँ चले आ सत्यानाशी यहाँ पर इसलिए आए क्या करने के लिए आए बाहर यहाँ से, अगर मेरे को सांप खा जाएगा तो अच्छा लेकिन तू नहीं खा जाए, इसलिए वहां पर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज शिक्षा देते हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रधर कहते हैं कभी कभी स्त्रियां सेवा की भावना से कट सनई सनई कट धीरे धीरे सेवा की भावना लेकर के आते हैं साधु को पास में आ करके धीरे 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 उसको संपूर्ण ग्राम कर लेते हैं। इसलिए धीरे 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 जी प्रबंध होते ही हैं, धीरे धीरे सेवा पास आने के उसको प्रति हो जाता है प्रीति भावना, धीरे धीरे ऐसे प्रेम बढ़ते 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 दिन भगवान से मन हट करके माया में मन चला जाता है, माया में चल जाता है। इसलिए सर्वज्ञ ने सीखा दिया हाँ अंत अंत भक्षण अपना साधु कभी चहर खाने पर कभी एक ईश्वर बर्बाद होता है, लेकिन अगर किसने माया में चल गया तो कभी एक ईश्वर किया उसको लाख करोड़ जीवन सर्वनाश हो जाता है। इतनी जो जबरदस्ती ऊपर में माया की संस्कार बरसाए एक जीवन का कर्म उसको 84 लाख जन्म झटका में उसको लगा देता है। इसलिए जीव माया से कितने दूर रहे, भजन करने वालों को कितने दूर रहने चाहिए माया से, यहाँ पर गौरव श्रद्धा स्वामी महाराज अपना जीवन चरित्र आज कठिन हुआ हुए अपना जीवन में जो शिक्षा दिया बहुत कठिन है उनको शिक्षा ग्रहण करना एक सुखद बजा है। इसलिए हम गुरु जी के चरण में गौरव श्रद्धा स्वामी महाराज के चरण में प्रार्थना करते हैं वे हम लोगों पर आशीर्वाद कृपा करें, किसी ना किसी जीवन में उनका आदर्श को लेकर के हम अपना जीवन में भजन साधन कुछ कर
श्रीमान पद्मनाभ महाराज संक्षेप में 10 मिनट्स
Mahapurusha, but yet externally showing the pathway for all to follow. Just as the six Goswamis also, they perform their internal bhajan. And internally, they were absorbed 24 hours in remembering Radha and Krishna's pastimes and wandering throughout the land of Braja. But externally, they were also showing Sakyapur, Kanama, Rana, Nativi, Kalabasani, Kito, Nitrahara, Vihara, Kani, Vijito, Chaktan, Tijino, Shayo. So they were externally showing very high level of renunciation by dint of their absorption in the eternal pastimes of the Lord. So it is important to understand, in the case of Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj, that we say he was sakshat vairagya multai. He was directly the embodiment of vairagya. But this vairagya, it was not artificially imposed, or it was not an external effort of his, but rather this vairagya was the result of his extreme moods of vipralamba, separation moods, and his deep absorption in the pastimes of the Lord. Just as Srila Raghunath Das Goswami, his renunciation was considered to be impeccable, and just like the lines that are created on a stone, they cannot be erased. So firm was his vow of renunciation. So in the same way, Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj's renunciation, it was on this same level. So his absorption in the eternal pastimes of the Lord was evident by the bhajan that he was performing, how he was completely aloof from all external association, and he preferred, even at one stage in his later life, he preferred to live within an external surrounding of a latrine with very bad odors and smells, and being absorbed completely in internal non-bhaja and remembering the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu in Navadvip Dham. He was living in the Dham. He had no sense of this external, apparently very abominable condition. So he was completely immersed, so much so that he told, I prefer to be in this place rather than smell the stench of the materialistic persons who are absorbed in the abominable sense gratification of this material world. So, Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj, he exhibited his mercy upon so many individuals who had come to him. And there are many narrations of different incidences from his life where he gave good advice. Because although he was a Vajranandi, he was not going to meet the public directly. He was not performing the activities of Gostiyanandi, which his great disciple, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, performed. But they were, of course, on the same level. The difference between Vajranandi and Gostiyanandi is only in the internal inspiration which the Lord is giving in the heart of that pure Vaishnava. Otherwise, there is no difference. Some persons, just like the six Goswamis of Vrindavan, they did not contact the general mass of people so much. But yet we have personalities like Srila Narottam Das Thakur, Srinivas Acharya, Shyamananda Prabhu, and so forth, in our Rupananda Guru Varga, who very extensively preached. But all were on the same level, actually. Only it is a dictation from within the heart, given directly by the Lord, that one will assume this position of Gostiyanandi or Vajranandi. So Srila Gaurakishore Das Goswami Maharaj, he gave very good advices, first of all, by his own example. But whenever anyone would come to him, or he would give them very direct advice, he would not mince words, and he would cut to the exact point which they would need for their eternal benefit. There's one incident about a young Babaji who came and he wanted to do bhajan in the association of Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj. So he was performing bhajan, but Srila Babaji Maharaj was giving him advice that was not to his liking. So he decided to leave that place, and he went off on his own and began to simply do solitary bhajan, nirjan bhajan. But after some time, he became very depressed. He became very sad. And gradually he returned to Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj. And at that time, Srila Babaji Maharaj told him, he said that actually, whatever sharp words are used by the pure devotee, it is his causeless mercy upon the conditioned soul. Because he is actually his real friend. He is telling him what is the real medicine for his diseased condition. And therefore he is acting as his real friend. But unfortunately the conditioned soul, he doesn't want to be corrected. He doesn't want to hear this good advice from the lips of a self-realized soul. And sometimes when he hears such words which may cut into his heart, then he may decide to leave that place and go away from that Vaishnava. But at the same time, this conditioned soul, he may remain in his home, and he may listen to so many criticisms and chastisements from his family members, from his wife, from his children, but he will never leave them. He will remain there, despite being constantly criticized. So he told this young Babaji that whatever I am teaching to you, it is for your benefit. So you should accept this as my mercy, and you should perform your bhajan in my association. Because in my association, you will be able to hear constantly about the pastimes of the Lord. You will be able to perform now bhajan. And in this way, you will surpass all of the impediments. But if you go off on your own, if you try to do nirjan bhajan on your own, you will simply be associating with your mind, and gradually material desires will overpower you, and you will give up the path of bhajan. So in this way, Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj, many persons, he was very famous at that time in Navadvip Dham as a Siddha Mahatma. And many persons became attracted to him. And they would want to come to him and get his blessings in various ways and get his support. There's one incident of one Munindra Chandri Chandra. Munindra Chandra Nandi. He was a very powerful, royal figure, landowner, but he was also like a king, and he was a Vaishnava. And he had appreciation for the association of the sadhus. So he wanted to invite Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj to come to a very great conference. He was trying to organize a Vaishnava conference. So he wanted that Babaji Maharaj will leave the Navadvip Dham and he will come there and reside in his palace for some days and he will attend this Vaishnava conference. So he was begging him and insisting, please Babaji Maharaj, come.
Today.
So then at that time, Babaji Maharaj told this Manindra Chandranandi, he told him that if I go there, first of all, I will have to leave Gaur Dham. I will have to leave this eternal Dham of my Vishwambhar, my Mahaprabhu. And then I may come there to your palace. And receiving very nice facilities at your palace, such as very nice bedding, very nice food, and so forth, I may become somewhat attached to these things. And gradually, I may become more and more attached, and I may start to see you as my competitor. That, oh, you have so much and I have so little. And therefore, I would make a little offense against you, and you are a Vaishnava and a Vaishnava king. So I prefer that this will not happen. I want to have a very loving relationship with you. I want to continue to cultivate pure bhakti in your association. So it is better that instead of my going to your palace, that you should give up your palace. all of your wealth, and you should come here and reside with me on the banks of the Ganga and accept the path of renunciation, and together we will hear Hari Katha and we will enjoy the taste of the bliss of pure bhakti. So Manindra Chandra Nandi, of course, he did not accept this advice. But nevertheless, Gopi Shardas Babaji Maharaj, he was always being very direct. He would never mince his words, and he would try to give the best advice so that a person could easily give up their material attachments. So Srila Babaji Maharaj, in many circumstances, his life was an example to show that in anyone who is residing in the holy dham of the Supreme Lord, they must not commit offense against the holy dham. They must not maintain their material attachments that come to the holy dham, bringing the same material attachments that they have in their ordinary family life. But if they want to come to the dham and actually reside in the dham, well, then they should actually follow this path that he was showing by his own example of total renunciation of the mundane sex gratification and completely absorbing oneself 24 hours daily in hearing, chanting, and remembering the pastimes of the Lord. So, this example, if it is not shown by the Mahabhagavat Vaishnavas, well then, how will the ordinary mass of people know what to do? Because everyone within this material world is in a diseased condition. They do not know what is beneficial for them. But when they come into the association of a great, pure Vaishnava, that Vaishnava can immediately detect, just like the most expert doctor who takes the pulse, can immediately detect what is the best medicine for that individual, and they can prescribe and give them all benefit. So Srila Gauri Shardas Babaji Maharaj, in our disciple succession, he is a very, very, very powerful Mahabhagavat, who is the spiritual master of our Param Gurudev, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And although Srila Gauri Shardas Goswami Maharaj, from an external point of view, from a material level, he was not educated and even illiterate. But Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, on the other hand, he was the most educated person, most highly intellectual, literate person, greatest intellect, powerful personality. But he submitted himself at the lotus feet of Srila Gauri Shardas Goswami Maharaj and begged him for initiation. And when he submitted himself by the order of Bhaktivinoda Thakur that he should go there, Srila Gauri Shardas Goswami Maharaj said that, "I am not qualified to give you. You are a very exalted personality. But I am just from an ordinary level, so I cannot give you initiation." And Bhaktisiddhanta Saraswati was crying at his lotus feet. And finally, after repeated attempts, then finally Srila Gauri Shardas Babaji Maharaj, he agreed to accept Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he has written himself that when I met my Guru Maharaj, then every shred of false ego that I ever had within my heart, of course he was a pure, eternal devotee of Lord Chaitanya from the Nityanam, but played the role of the sadhaka in this world. And he told that he completely removed any kind of false ego that I had, and I realized my position as a soul within this world completely dependent upon the mercy of his lotus feet. So in our disciple succession, all of our Guru Parampara, they are of this level. They are the Mahabhagavats, and they are Rupanuga Vaishnavas, Rasik Vaishnavas, down to the present day, coming down in our mind to Srila Bhakti Pragyan Kesha Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and down to our beloved Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, who also told us that I have gone to the university of Srila Gauri Kishoradas Babaji Maharaj, and that is now why I can preach all over the world and give this mercy in the message of Chaitanya Mahaprabhu. So it's all thanks to His Majesty. I beg that we become servants of His lotus feet and become servant of the servant of the servant of Srila Gauri Kishoradas Goswami Maharaj.
Very good.
अवलंबन करके हम अपने गुरु का